आस्था की कोशिशें। नहीं नहीं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे पास ऑलरेडी कई सारी साड़ियां पड़ी हुई हैं, मैं उनमें से ही कुछ पहन लूंगी। और तुम मेरे लिए जो इतने प्यारे झुमके लेकर आई हो, मैं वही झुमके पहन लूंगी। अब आगे, फिलहाल मेरा कहीं जाने का कोई इरादा नहीं है। ये कहने के बाद राधिका एकदम चुप हो गई। वहीं सुमित भी राधिका की आवाज में नाराजगी साफ साफ महसूस कर लेता है। आस्था भी अब तक समझ चुकी थी कि जरूर इन दोनों के बीच कुछ हुआ है। वो सिचुएशन संभालते हुए राधिका को मनाने लगी। आस्था प्यारी सी आवाज में, राधिका दीदी, प्लीज आप सुमित भैया के साथ जाइए ना, और हाँ, उन झुमकों से मैचिंग कोई साड़ी खरीद कर लीजिएगा, फिर देखिएगा, आप बहुत प्यारी लगेंगी। प्लीज मेरे लिए प्लीज जाइए ना, वरना मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। आस्था ने अपना वास्ता देकर राधिका को शॉपिंग के लिए मनाया और उन दोनों को शॉपिंग के लिए भेज दिया। फिलहाल आस्था की नज़र फोन पर बिजी आकाश पर पड़ी। आकाश को एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था और इस वक्त वो कॉल पर बिजी था। तब आस्था तुरंत उसके पास गई और उसने आकाश के हाथ से फोन छीनकर उसे नाराजगी जताई। आस्था जिद्दी अंदाज में, आकाश भैया, मैंने रश्मि दीदी को पहले ही फोन कर दिया है, वो पहले से ही हॉस्पिटल में मौजूद हैं, उनके सारे चेकअप वगैरह भी पूरे हो चुके हैं और वो बस कुछ पेशेंट्स हैंडल कर रही हैं। जब तक आप उनके पास पहुंचेंगे तब तक वो फ्री हो जाएंगी, फिर आप उन्हें शॉपिंग पर लेकर जाइए। आकाश आस्था की बात सुनकर अगले ही पल एकदम से सकपका गया। वो उससे कुछ और कहना चाहता था, लेकिन आस्था ने उसके लिए कोई दूसरा चॉइस नहीं छोड़ा था, इसीलिए उसने तुरंत ही शॉपिंग के लिए निकलने का रुख कर दिया। ऐसे ही आस्था ने एक एक करके सारे कपल्स को घूमने फिरने भेज दिया था। अब वहां दादाजी, अभिमान जी, अंश, नानी माँ और आस्था ही मौजूद है। सबको भेजने के बाद दादाजी आस्था के पास आए और उसके सिर पर हाथ रखकर इमोशनल हो गए। दादाजी धीमी आवाज में, बेटी, तुमने सब लोगों की जिंदगी की प्रॉब्लम पल भर में ही खत्म कर दी, सभी को एक साथ वक्त बिताने का मौका दिया, पर तुम्हारा क्या बेटा? तुम्हारा दिल अंदर से कितना दुखी है, कितना खाली है, ये हम महसूस कर पा रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही मेरी बच्ची अपनी जिंदगी की मुश्किलें भी पार कर लेगी। तभी नानी माँ ने आस्था को गर्व से गले लगाकर शाबाशी दी। नानी माँ आस्था का हौसला बढ़ाते हुए, तुम तो हमारी बहादुर बिटिया हो, जिस तरह से तुमने सबकी जिंदगी नॉर्मल कर दी है और सबकी जिंदगियों में खुशियां भर दी हैं, देखना उसी तरह से हमारे कान्हा जी भी तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर देंगे, हमें उनसे पूरी उम्मीद है। आस्था दादाजी और नानी माँ की बातें सुनकर कुछ पल के लिए इमोशनल हो गई थी, लेकिन तभी उसे अंश के रोने की आवाज़ सुनाई देती हैं। अभिमान जी उसे संभाल नहीं पा रहे थे और वो जोर जोर से रोने लगा। आस्था ने जल्दी से जाकर उसे अपनी गोद में लिया और अभिमान की ओर देखकर बोली, पापा, आप एक काम कीजिए ना, सामने वाले मेंशन पर जाकर देख लीजिए, मैंने वहां कुछ नौकरों को साफ सफाई के लिए भेजा है, आप एक बार जाकर देख लीजिए कि वे सही से काम कर रहे हैं या नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। वैसे भी मुझे वसुंधरा पर अभी भी कुछ खास भरोसा नहीं है। आस्था ने वसुंधरा का नाम सीधे नहीं लिया, पर इशारा साफ था। अभिमान जी को आस्था की बात सही लगी, वो एकदम से हामी भरते हुए कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं जाता हूँ और देखाता हूँ कि कोई काम कर रहा है या नहीं, आप लोग यहाँ पर अच्छे से तैयारी कीजिए। फिलहाल आस्था ने नानी माँ की ओर देखा और बिल्कुल आराम से कहा, नानी माँ, अंश को तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी है, वैसे भी परसों पूरी रात हम कृष्ण जी के भजन कीर्तन में जागेंगे और आधी रात के बाद अपना उपवास तोड़ेंगे, ठीक है? कृष्ण जी को भोग लगाने के बाद आप लोग भी इसमें शामिल होंगे, आप एक काम कीजिएगा, कल दिन में आप लोग थोड़ी देर आराम कर लीजिएगा ताकि रात में आप जागरण में आराम से जाग पाएं। आस्था ने सबको दिन में आराम करने की सलाह दी क्योंकि कृष्ण भक्ति के लिए जागरण रख रही थी। दादाजी ने आस्था के सिर पर हाथ रखा और बिना एक शब्द कहे अपने कमरे में चले गए। इधर अरमान पूरे रास्ते आस्था के बारे में सोचता रहा। आज जिस तरह से उसने टाइगर और मारिया के लिए आवाज उठाई थी, वो बात उसके दिमाग से जा ही नहीं रही थी। बार बार उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे आस्था उसे ऑर्डर दे रही थी, जैसे वो उसका कोई सेवक या नौकर हो। ये सारी बातें सोचते ही उसके सीने में गुस्सा भड़क उठता है। वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो किसी लड़की की बातें सुनकर अपनी जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहता था। फिलहाल अरमान जल्दी से अपने ऑफिस में पहुंचा। उसके ऑफिस पहुंचते ही उसे संजना मिली। संजना ने जीन्स और शॉर्ट कुर्ती पहनी थी, उसने अपने लंबे घने बाल खुले छोड़े थे और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई थी। संजना अरमान को मीटिंग्स वगैरह की डिटेल्स दे रही थी। सर, आपके कहने पर मैंने आपकी कंपनी के साथ जिन जिन कंपनियों ने कोलैबोरेशन किया है उनके ओनर के साथ आपकी मीटिंग फिक्स कर दी है, और मिस्टर अविनाश रघुवंशी 15 दिनों के बाद इंडिया आ रहे हैं, इसलिए मैंने मिस्टर रघुवंशी के साथ आपकी मीटिंग फिक्स कर दी है। लेकिन अरमान के दिमाग में उस वक्त कुछ और ही चल रहा था। उसने ठान लिया था कि वो जल्द ही पता लगाएगा कि आखिर ये लड़की किसके साथ चक्कर में है, क्योंकि अरमान को आस्था पर पूरा शक हो गया था। उसने फटाफट अपने केबिन में बैठकर गूगल सर्च करना शुरू कर दिया, बच्चा ज्यादातर कितने महीने में पैदा होता है। सारी जानकारियों के अनुसार जितनी बातें अरमान के सामने आईं, उसके अनुसार उसने सोचा।
दो साल पहले तो उसका पति उसे छोड़कर चला गया था, लेकिन ये बच्चा अभी 4 से 5 महीने का है, तो ज्यादा से ज्यादा उसे पैदा हुए 1.5 साल हुआ होगा। अगर उसका उसे पति 2 साल पहले छोड़कर चला है तो फिर ये बच्चा किसका है? कहीं ना कहीं अरमान को शक था कि किस तरह से ये लड़की सबके सामने उसे बेबाकी से बात करती है और किस तरह से वो उसे टकटकी लगाकर देखती रहती है, और ऊपर से वो अपना बच्चा भी उसकी गोद में देकर उसे छोड़कर चली जाती है। कहीं ना कहीं ये सारी बातें उसके दिमाग में खटक रही थी। अरमान ने सोचा, जरूर ये लड़की कुछ न कुछ गड़बड़ कर रही है, या तो इसे मेरे पास किसी दुश्मन ने भेजा है, या तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, वरना मेरे घर वाले इसे इतना मान सम्मान क्यों देते हैं और उसके बेटे को इतना ज्यादा प्यार दुलार क्यों करते हैं। अरमान एक उलझन में पूरी तरह खोया हुआ था। वहीं संजना भी उसके केबिन में मौजूद थी। उसे अरमान के चेहरे पर आई हुई परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। संजना मन ही मन सोच रही थी, आखिर बॉस को किस बात की इतनी टेंशन है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अरमान से सीधे कोई बात पूछ सके। अरमान ने अपना लैपटॉप बंद किया और संजना की तरफ देखकर रोबदार आवाज में बोला, अगले 3 दिनों की मेरी सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं कोई मीटिंग अटेंड नहीं करने वाला हूँ। ये बोलकर अरमान उठ खड़ा हुआ और सीधा केबिन से बाहर निकल गया। अरमान को जाते हुए देखकर संजना के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आए, लेकिन वो चाहकर भी अरमान से कुछ कह नहीं पाई। वहीं दूसरी ओर अरमान ने मन ही मन ठान लिया था, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं सिर्फ आस्था पर नजर रखूंगा। उसकी बेबाकी, सबका उसके इर्द गिर्द घूमना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये लड़की मेरे घर परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही है। पहले आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान सब मेरे हर फैसले में मेरे साथ खड़े रहते थे, लेकिन जब से आस्था आई है सबका बिहेवियर मेरे लिए बदल गया है और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरमान ने गहरी सांस ली और कुछ लोगों को तुरंत मैसेज करना शुरू कर दिया। उधर अंश के सोने के बाद नानी माँ आस्था के पास आई और धीरे से उससे पूछा,
बेटा अंश सो गया है, मुझे लगता है जब ये उठेगा तो बिल्कुल फ्रेश फील करेगा और उसके उठने के बाद हम उसे संभाल लेंगे। तब तक तू भी अपने लिए कुछ शॉपिंग वगैरह कर ले, आज अंश का ध्यान मैं रखूंगी। आस्था उनकी तरफ देखकर नामे सिर हिलाते हुए बोली, नानी माँ कपड़े वगैरह तो हमने वैसे भी ऑस्ट्रेलिया से बहुत लाए हैं और अभी तो फिलहाल हम ये देखने जा रहे हैं कि वसुंधरा जी सही से काम कर रही हैं या नहीं। वैसे भी पापा को भले ही हमने वहाँ भेज दिया है, लेकिन ऐसी चालबाज औरत के पास पापा को भेजना भी हमें ठीक नहीं लग रहा, इसलिए हम खुद जाकर वसुंधरा पर नज़र रखना चाहते हैं। नानी माँ कुछ सोचते हुए मुस्कुराई। नानी आस्था को रोकते हुए, बेटा तुझे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, वैसे भी अंश कभी भी उठ सकता है, उसके पास किसी ना किसी का होना ज़रूरी है, खासकर तेरा होना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी उसे हम सब के साथ घुलने मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसीलिए तू यही रह, मैं वहाँ जाती हूँ। मैं वहाँ जाकर ध्यान रखती हूँ कि कहीं वसुंधरा अभिमान बेटे को अपने जाल में फंसाने की कोशिश ना करे। नानी माँ का सुझाव सुनकर आस्था ने धीरे से हामी भरी, फिर वो अंश को प्यार से निहारने लगी। कुछ देर बाद नानी माँ फटाफट रघुवंशी मेंशन पहुँच गई। नानी माँ पहली बार रघुवंशी मेंशन आई थी, वसुंधरा वीर और अभिमान जी भी पहली बार यहाँ आए थे। रघुवंशी मेंशन की खूबसूरती देखकर सभी हैरान रह गए। ये मेंशन सिंघानिया मेंशन से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत था, खासकर उसका गार्डन तो देखने लायक था। नानी माँ ने खुश होकर मन ही मन सोचा, वाह आस्था बिटिया, तेरा घर तो बहुत प्यारा है। जैसे ही वे अंदर पहुंची उन्होंने देखा कि अभिमान एक कुर्सी पर बैठे हैं और उनके सामने वसुंधरा डेकोरेशन की निगरानी कर रही है। वहां पहले से ही कई सारे नौकर मौजूद थे। आस्था ने साफ सफाई के साथ साथ थोड़ी सजावट के लिए उन्हें वहां भेजा था, इसीलिए वे फूलों की लड़ियां और बाकी सजावट का काम कर रहे थे। अभिमान बिना कुछ कहे वसुंधरा को एकटक देख रहे थे। वहीं वीर उनके सामने एक मामूली नौकर की तरह बर्ताव कर रहा था। उसकी हरकतें जानबूझकर कुछ ऐसी थीं कि अभिमान को उसके लिए बुरा लगे, लेकिन सच तो ये था अभिमान जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वे पहले से ही वीर की सच्चाई जान चुके थे। अभिमान जी जानते थे कि वीर अपने समय में कितना बड़ा गुंडा मवाली था और कितनी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था, इसीलिए वो वीर को इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाले थे। अगर उसे उनका बेटा बनना है तो पहले उसे एक अच्छा इंसान बनाना होगा, इसीलिए जो कुछ भी वीर के साथ हो रहा था अभिमान जी उसे होने देना चाहते थे। आखिरकार अभिमान जी के अंदर एक पाप का दिल था और जब से उन्हें ये पता चला था कि वीर उन्हीं का खून है, तब से उनके मन वीर के लिए कुछ अलग से जज्बात जन्म ले रहे थे। फिलहाल नानी माँ के वहाँ पर आने से वसुंधरा तुरंत ही अभिमान जी के सामने से हट गई थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो अभिमान जी को काफ़ी ज़्यादा टशन दे रही थी। वहीं अभिमान जी भी वसुंधरा को मेहनत करते हुए देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, मानो जैसे उनके बेचैन दिल को बहुत सुकून मिल रहा हो। वसुंधरा की नानी माँ के सामने आकर बात करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि नानी माँ की तीखी बातें उसके दिल को भीतर तक चोट पहुँचा दिया करती थी। अपने कारनामों की वजह से ना तो वो नानी माँ को कुछ कह पाती थी और ना ही अपने लिए कोई स्टैंड ले पाती थी, इसीलिए नानी माँ की नज़रों से बचते हुए वसुंधरा वहाँ से खिसकने लगी और जल्दी से वहाँ से कहीं और जाकर काम करवाने लगी। वहीं नानी माँ भी अभिमान जी के साथ बैठ गई और वसुंधरा की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने अभिमान जी से पूछा। नानी माँ मुँह बनाते हुए, बेटा एक बात बताओ, क्या तुम्हें इंसान पहचानने की समझ नहीं थी जो इस औरत ने तुम्हें इतना मूर्ख बना दिया था? अब जैसे ही नानी माँ ने ये सवाल पूछा तो वैसे ही अभिमान जी का दिमाग भग से उड़ गया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो नानी माँ की इस बात का क्या जवाब दे।
क्योंकि वसुंधरा उनकी पहली नजर की मोहब्बत थी। वो वसुंधरा को कॉलेज लाइफ से ही बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, लेकिन अब नानी माँ को अपनी लव स्टोरी बताने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिलहाल जल्दी ही अभिमान जी ने गहरी सांस ली और उनकी आंखों के सामने वसुंधरा का जवानी वाला रूप आ गया। जिस तरह से वसुंधरा जवानी में अपनी अदाएं दिखाकर सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया करती थी, तो आधा कॉलेज ही वसुंधरा के पीछे पागल हो जाता था और उनमें से एक नाम अभिमान जी का भी था। लेकिन उन सारे नामों में से वसुंधरा ने अभिमान जी को ही चुना था अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। ये सारी बातें याद आते ही अचानक से अभिमान जी के गाल अपने आप ही लाल हो उठे।